ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो बीती बातों पे बिंदु धरो। बिंदु बनो उसे याद करो।
ओम शांति। बहुत अच्छा। शांति का प्रवाह है। आप सब आगे भी अनेक ग्रुप भट्टी में चले, आप सबके आने से और बेहद के घर में तपस्या करने से और वायुमंडल शक्तिशाली बनता है और हम सबको भी वाइब्रेशंस मिलते हैं। ऑटोमेटिक बाकी भाई बहने भी तपस्या के लिए अटेंटिव हो जाते हैं। जैसे हम साइलेंस में रहते हैं या हम धीरे से अव्यक्ति आवाज में जरूरी बात बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भल मौन में नहीं है, भट्टी में नहीं है, तो वो भी ऑटोमेटिक अव्यक्ति आवाज से बोलते हैं। तो ये अटेंशन दूसरों को भी मिलता है। हमारे यज्ञ का सबसे आधुनिक और युवा समर्पित धन आज बाबा के घर में आया है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आधुनिक जिस समय में आप आए हैं, बाबा के बने हैं, एक आधुनिक युग में आप सब आए हैं। पिछले 20-25 वर्षों में जिस प्रकार से भौतिक साधन सुविधाएं विज्ञान और टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है, उस दृष्टि से आगे का समय माना उससे पीछे वाला समय 25 वर्ष पूर्व का समय इतना आधुनिक नहीं लगता है। बहुत स्पीड से और बहुत सूक्ष्म खोजे हुई हैं और भौतिक सुख सुविधा के साधन संसार में बने हैं। ऐसे समय में आप सभी बाबा के बने हैं, अवश्य ही उनके मार्क्स ज्यादा है। हमारा समय तो आज से 40-50 वर्ष पूर्व का समय तो था ही सात्विक। ज्ञान न लेने वाले लोग भी नैतिक थे, चरित्रवान थे। उस समय हमारा योगी बनना, ईश्वर को जीवन समर्पित करना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज चारों ओर चरित्र जैसी कोई चीज नहीं रही। विशेषकर पिछले 30-35 वर्षों के जो भी पीढ़ियां हैं, लोग हैं, जिस प्रकार से चरित्र का हनन हुआ, पतन हुआ, नैतिकता का जो गिरना हुआ, जीवन के नियम संयम का जिस प्रकार से रास हुआ, एक ऐसे समय में आप सबने योगी पवित्र जीवन अपनाया, इसलिए आप सबको बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत ही प्रशंसा के पात्र है आप सभी, और अपने भाग्य पर गर्व करिए कि इस समय में आपकी बुद्धि इतनी शुद्ध सात्विक रही। और दूसरी बात, इसलिए भी अभिनंदन के आप पात्र हैं कि जीवन भर के लिए ये चीज अपनाई, सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन जीवन भर के लिए ये चीजें आपने अपनाई हैं। ये एक बहुत बड़ा संकल्प है। अक्सर हम देखते हैं कि पिछले 30-35 वर्ष के दौरान जो आत्माएं निकली है, बहुत विल पावर कम होता है। आपने इतना बड़ा संकल्प किया, इससे सिद्ध है कि आप शक्तिशाली आत्माएं हैं। तीव्र इच्छा शक्ति आपके अंदर है। और तीसरी बात कि जीवन समर्पित किया आपने, सिर्फ ज्ञान में नहीं चले, सिर्फ जीवन के लिए लक्ष्य नहीं बनाया, लेकिन जीवन आपने समर्पित किया। जिस समय समर्पित बहनों का परिवार भी बहुत बड़ा हो चुका था, काफी स्वभाव संस्कार नंबरवार स्थिति की कई बातें जानते हुए भी, हम लोग थे तब तो बहुत कम लोग समर्पित थे, स्वभाव संस्कार टकराव जो भी बातें हैं आप जानते हैं, वो इतनी नहीं थी, पर आपके सामने थी। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने जीवन बाबा को समर्पित किया। तो तीन बिंदी पर तो हम बात करेंगे, लेकिन तीन प्रकार के अभिनंदन के पहले ही आप पात्र हैं। अवश्य ही जब जीवन बाबा को दिया है, यज्ञ को दिया है, न सिर्फ बाबा को दिया लेकिन यज्ञ को भी दिया है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो यज्ञ से हम जुड़ते हैं, सेवा कारोबार जो कुछ करना है वो संगठन के साथ करना है। इसलिए जब जीवन बाबा को, संगठन को और सेवा को आपने समर्पित किया है, तो लक्ष्य भी ऊंचा ही रखा होगा कि जब बने ही हैं तो सामान्य नहीं बनना है। संगम युग में प्रवेश किया ही है, ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में कदम रखा ही है, तो साधारण पार्ट प्ले नहीं करना है। जरूर आपने ये लक्ष्य रखा होगा कि कुछ विशेष बनकर दिखाना है, और जो बाबा कहते हैं दो बातें, कि छोटे सुभान अल्लाह और लास्ट सो फास्ट, ये दो बात जो बाबा ने कही है जरूर आपने सोचा होगा कि मैं अपने पार्ट के द्वारा इसको सही सिद्ध कर बताऊंगी, इसको राइट में सिद्ध कर बताऊंगी कि बाबा ने जो कहा है वो सत्य कहा है, हम उनके एग्जाम्पल हैं। जैसे विदेशी भाई बहनों को बाबा कहते हैं कि आपने बाबा को विश्व कल्याणी सिद्ध करके बताया, ऐसे आप सभी भी बाबा की कही हुई ये दो बातें ऐसे ही सिर्फ उमंग उत्साह बढ़ाने की बात नहीं, सिर्फ खुश करने की बात नहीं, कई बार बोलते हैं कि ऐसे ही बाबा फूल चढ़ाते हैं, परंतु नहीं, आप अपना ऐसा विशेष पार्ट समर्पित जीवन का बनाए कि जो ये दोनों बातें राइट सिद्ध हो जाए। और जैसे आज के जनरेशन की अपनी ही विशेषताएं हैं, भल आध्यात्मिक नैतिक चारित्रिक रीति से सही बातें उनको पता नहीं है, लेकिन जिस युग में जिस जमाने में वे पैदा हुए हैं और जिस प्रकार से विज्ञान टेक्नोलॉजी उनके सामने विकसित हुई है, उसमें उन्होंने अपना विशेष रोल बनाया है, बहुत कुछ नया करके दिखाया है जो हमारे जैसे पहले वाले बुजुर्ग सीनियर्स नहीं करते हैं, वो आप कर सकते हैं, ऐसा दुनिया में भी है। तो आप सभी युवा बहनों को जब हम देखते हैं तो मन में यही चलता है कि ये भी विशेष कर सकते हैं, जो हम नहीं सीखे, चाहे कंप्यूटर की बातें हैं या जो भी एक्सपर्टाइजेशन की बातें हैं, आजकल हर फील्ड में एक्सपर्टाइजेशन है, डेकोरेशन कैसे करना, परोसना कैसे, खाना कैसे नया नया बनाना, मतलब हर फील्ड में एक्सपर्टाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है, और वो लोग करके दिखाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट आजकल कहते हैं कि वो लोग एकदम आधुनिक रूप से सुंदर बना करके करके दिखाते हैं। तो आप सभी ने भी जो बाबा के ज्ञान का क्षेत्र चुना है, ज्ञान योग पुरुषार्थ सेवा जो कुछ कहो, उसमें भी विशेष करने की आपको मार्जिन है, आप भी वो करके दिखा भी रहे हैं और भी दिखा सकते हैं। लक्ष्य सिर्फ हमारा ऊंचा हो, साधारण पार्ट नहीं, सेवा की दृष्टि से भी, अवस्था की दृष्टि से भी, और विशेष। अभी जब यज्ञ संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से बाबा समय का सिग्नल दे रहे हैं, तपस्या पावरफुल बनाने के लिए सिग्नल दे रहे हैं, सूक्ष्म सेवा के प्रति जो ध्यान खींचवा रहे हैं, चलन और चेहरे से सेवा करने की जो बात बाबा कर रहे हैं, और जिस प्रकार से बाबा हमें पावरफुल बनने के लिए कह रहे हैं, बाबा के इन सब इशारों को बुद्धि में रखते हुए आप जरूर सोचते होंगे कि हमें भी बाबा को रेस्पोंड करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। सीजन पूरी हुई, बाबा उधर गए, हम अपने में ऐसे नहीं। जरूर आप सोचते होंगे कि बाबा की जो आशाएं हैं, हमसे जो अपेक्षाएं हैं, जिस ऊंचाई पर बाबा हमें देखना चाहते हैं, उसका जवाब प्रैक्टिकल हमें देना है। सिर्फ बड़ों को नहीं देना, सिर्फ निमित्त आत्माएं इंचार्ज, चाहे जोन इंचार्ज, सब जोन इंचार्ज, ग्रुप सेंटर इंचार्ज, बड़ों को इसका रेस्पोंड देना है, ऐसे नहीं है। आप अवश्य सोचते होंगे कि हमें भी इसका जवाब देना है। जैसा बाबा कहते हैं निर्विघ्न यज्ञ, एक अवस्था की परिपक्वता, मैच्योरिटी। जैसे आज की जनरेशन के लिए कहा जाता है कि पहले 16 साल की आयु पर अकल आती थी, आज की जनरेशन के लिए कहते हैं कि 8-10 साल में ही उनको इतना समझ, बुद्धि, इंफॉर्मेशन, नॉलेज सब आ जाता है। तो जब दुनिया के हिसाब से हो सकता है, तो ज्ञान के हिसाब से भी तो हो सकता है कि भले आप 8-10-2-5 साल वाले हैं, पर आप इतना स्पीडी, फास्ट, अपने में आध्यात्मिक रूप से परिपक्वता ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अवस्था बनाने के लिए जितना बड़ों ने या दूसरों ने टाइम पास किया, उनका अपना अलग रोल, हिसाब अलग है। सिर्फ उनको वर्षों की दृष्टि से आप न देखें कि भी इन्होंने तो 50 साल बिताए तब अवस्था बनी, हमें भी 50 साल मिले तो हम भी बहुत कुछ अवस्था बना दें, ये गलत सोच है। ऐसा नहीं है। हमें अपनी मार्जिन को बुद्धि में रखकर कि हमारे लिए समय की मार्जिन कितनी है, और उस हिसाब से हमें अपने आप में आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनना है, तो मुझे क्या करना है? कम समय में, कम मार्जिन में क्यों बाबा अभी तीव्र पुरुषार्थ की बात करते हैं? क्यों समय और संकल्प व्यर्थ न करने की बात करते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा हम सफल कर सके, जमा कर सके। माना कम मार्जिन कम समय में भी हम अपनी परिपक्वता ला सकते हैं। हम ये सोच कर अलबेले न रहे कि हमें इतनी मार्जिन नहीं तो हम कहां से बनेंगे, नहीं। एक सर्वे में मैंने पढ़ा था कि संसार के 400 वर्ष में जितनी खोजें नहीं हुई, अरे 4000 वर्ष में जितनी खोजें नहीं हुई वो 400 साल में हुई, और उस प्रकार से पूरा उसने हिसाब बताया था कि जो 400 साल में हुई नहीं वो 40 साल में हुई। तो आप सबको सदा अंदर से ये रहे कि हम क्या विशेष कर सकते हैं, अपनी व्यवस्था मर्यादाओं में, अपनी जूनियर स्टेज में रहते हुए भी हम क्या कर सकते हैं। दो चीज है, एक है सफल करना और एक है जमा करना। बाबा के कार्य में हमने लगाया समय, शक्ति, धन, मन, तन, गुण, विशेषता, कला, योग्यता, जो कुछ है हमारे पास, लौकिक अलौकिक स्थूल सूक्ष्म जो भी हमारी योग्यताएं हैं, उनको बाबा के कार्य में लगाना, सफल करना है। पर जमा कितना हुआ, एक है सफल करना और एक है जमा उसमें से कितना होगा। जहां तक जमा करने की बात है, जो कुछ हमने सफल किया अगर वो विधि पूर्वक हुआ तो जमा हुआ। सेवा की विधि क्या है, समय हमने दिया पर सेवा करने की विधि पूर्वक किया तो उसमें से मैक्सिमम जमा हुआ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि बाबा के कार्य में धन लगाए पर निमित्त भाव से लगाया, निर्संकल्प होके लगाया, अपना समझ कर लगाया, लगाने के बाद वर्णन नहीं किया तो बाबा कहते हैं वो अधिकार नहीं रखा, रिटर्न ज्यादा नहीं लिया, तो मैक्सिमम जमा है। हमने धन लगाया पर मैपन आया, वर्णन किया अनेक जगह, अधिकार किया, रिटर्न चाहा, तो वो सब माइनस होगा ना, तो जमा कितना हुआ, समझे बात को। इस प्रकार हम समर्पित सब, हमने जीवन बाबा को दिया, जो कुछ हमारे पास समय, संकल्प, तन, मन, बुद्धि, कला, गुण, विशेषता, योग्यता, जो कुछ है, एक तो सफल कितना किया। जरूरी नहीं यज्ञ में मैं आई हूं तो मैं सफल कर रही हूं, खोजो सफल कितना किया। बाबा कहते हैं जितना है उसमें से कितना किया, उस रीति से हिसाब बनेगा। भाई मेरे पास, हम समर्पित है, हमारे पास 24 घंटा है, समर्पित माना हम बाबा के हैं, हमारे 24 घंटे पर बाबा का अधिकार है, उसमें से सफल कितना हुआ। तन की शक्ति, मन की शक्ति, जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ सेवा में आकर बाबा के ज्ञान योग से और मैं सीखी हूं, ये सब कुछ सफल कितना किया। और उसके बाद हिसाब लगाओ जमा कितना हुआ। अगर हमें बार बार कहना पड़ा, कहने के बाद भी ढंग से नहीं किया, जवाबदारी से नहीं किया, रूठते रहे, रुसते रहे, ज्यादा सेवा लेते रहे, पालना ज्यादा हमारे लिए करनी पड़ी, जो कुछ भी है उस हिसाब से माइनस होने के बाद जमा कितना हुआ। क्योंकि जितना जमा होता है उतनी एम्पावरमेंट होती है। क्यों पुराणों की स्थिति शक्तिशाली है? जमा है, कष्ट सहे, त्याग किया, अभावों में रहते हुए भी किया दिल से, ये सब जमा होता है, वो स्थिति को पावर भरता है। बाबा कहते हैं जमा है तो अनुभूति खुद को भी होगी, दूसरे को भी करा सकेंगे। जैसे दुनिया में जितना धन साधन जमा है वो व्यक्ति निश्चिंत रहेगा, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, खर्चा आ जाए, वो घबराएगा नहीं, चिंतित नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है मेरे पास अच्छा खासा धन जमा है, मैं कर सकूं। हमारी अवस्था अच्छा लड़ोल रहे, एक रस रहे, निश्चिंत रहे, जमा चाहिए, जमा चाहिए, तब परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, स्थिरता आएगी और अनुभूति हम करा सकेंगे। जो बाबा ने कहा ना, तुम्हारे चेहरे से, चलन से, वाइब्रेशन से अनुभूति करा सकेंगे, और उस जमा करने के लक्ष्य से ये तीन बिंदी बहुत जरूरी है। बाबा तो सहज हमें बता देता है, पर ये पूरा हिसाब से है। जमा करने की विधि ये तीन बिंदी है। आप जानते हैं तीनों बिंदी। पहली आत्मस्थिति, जितना बॉडी कॉन्शियस रहते हैं एनर्जी खर्च होते हैं, जो हमारी उससे पॉजिटिव एनर्जी कहो, स्पिरिचुअल एनर्जी कहो, साइलेंस पावर जो कहते हैं, वो सिर्फ शांति आवाज न करना वो शक्ति की बात नहीं है। साइलेंस पावर मीन्स स्पिरिचुअल पावर, स्थिति शांत, स्थिर। तो जितना बॉडी कॉन्शियस हम बनते हैं उतनी हमारी शक्ति खर्च होती है, जितना सोल कॉन्शियस रहते हैं एनर्जी रिजर्व रहती है। इसलिए पहली बिंदी वेस्ट खत्म करने, एनर्जी को रिजर्व रखने के लिए। सोल कॉन्शियस, पहली बिंदी मैं आत्मा हूं, ये सिर्फ स्मृति नहीं, सोल कॉन्शियस स्थिति, स्मृति चिंतन अवस्था बनाने के लिए वो अभ्यास है, वो पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ का रिजल्ट सोल कॉन्शियस स्थिति है। हम जानते हैं बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, भूलें होती हैं, विकर्म होते हैं। हम यही कहते हैं ना, द्वापर युग से बॉडी कॉन्शियस बने, हर कर्म पाप कर्म होता गया। सोल कॉन्शियस जितनी हमारी स्थिति रहेंगी, नई भूलें नए पाप नहीं होंगे। माना माइनस का नया खाता ऐड नहीं होगा। जिस क्षण भूल होती है, उस क्षण अगर हम अपने आप को चेक करें, माना अगर हम अपना माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करें, खुद को चेक करें, तो पाएंगे कि उस क्षण हम खुद से डिस्कनेक्ट होते हैं, तभी भूले होते हैं। क्योंकि सोल कॉन्शियस स्थिति में हम अपने ओरिजिनल गुणों में स्थित होते हैं। ये हमारी मूल साधना है, आत्मभिमानी स्थिति बनाना। ये हमारी मूल फाउंडेशन की साधना है। अनुभव ये कहता है हम लोगों का कि अगर ये पाठ हमारा कच्चा रह जाता है, तो हमारी जो सूक्ष्म दृष्टि, वृत्ति, संस्कार जो है वो बदलना मुश्किल है फिर। और विशेषकर प्यूरिटी के संदर्भ में फिर हमारी दृष्टि वृत्ति देह आकर्षण में आना, देहधारी के आकर्षण में आना, वासना मन में आना, पर्टिकुलर इस संस्कार को बदलने में तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए ये पहली बिंदी बहुत जरूरी है। जितना देहभान से डिटैच, स्व में हम स्थित है, नेगेटिव प्रभावों से मुक्त रहेंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है कि सोल कॉन्शियस स्टेज सेफ्टी की स्टेज है, सेफ्टी की स्टेज है। सोल कॉन्शियस स्टेज निर्लेप स्थिति है। भक्ति में लोग आत्मा को निर्लेप कहते कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा जो कुछ कर्म करती है लेपक्षेप लगते हैं, पर सोल कॉन्शियस स्टेज निर्लेप स्टेज है। नेगेटिव प्रभावों से आप मुक्त रहेंगे। भला आप देखेंगे जानेंगे तो भी प्रभाव नहीं आएगा। विशियस वाइब्रेशंस, इवील वाइब्रेशंस, इससे आप मुक्त रहेंगे। योग और पवित्रता के बाद भी हमारा विल पावर भी बहुत जरूरी है। जब योग, पवित्रता और विल पावर, माना हमारी स्थिति की शक्ति है, तो कोई वाइब्रेशन प्रभावित नहीं करेंगे। यही कारण है बाबा रोज मुरली में बार बार हर रोज यही पाठ पक्का कराते। न सिर्फ योग कराएं तब, न सिर्फ हम ज्ञान दे तब, लेकिन आपस में भी जहां जो भी हम रहते हैं, कामकाज करते हैं, सेवा करते हैं, न सिर्फ भाइयों के साथ लेकिन बहनों के साथ भी, जितना सोल कॉन्शियस स्टेज उतना न्यारापन, रूहानियत हमारी दृष्टिवृत्ति में आएगी। साक्षी स्टेज बहुत जल्दी हम बना सकेंगे, बहुत जल्दी परख शक्ति आएंगी। इसलिए ये पहली बिंदी है, जमा करने में भी कितनी मददगार हुई। बताए ना, एनर्जी वेस्ट नहीं होंगी, भूले नहीं होंगी, गलत प्रभाव नहीं आएगा, वो हमें एम्पावर करेगी, माना शक्ति बनी रहेगी हमारी। और इस प्रकार दूसरी बिंदी बाबा की याद, जो सोर्स ऑफ एनर्जी, मूल स्रोत जो है शक्ति देने वाला, अल्टीमेट जो हमारे जीवन का आधार है, जिम्मेवार है, जितना बाबा से जिगरी लगन, याद, बाबा कहते हैं ना, याद ही छत्र छाए, स्मृति ही समर्थि देती है। हमें कोई व्यक्तियों पर आधारित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें मार्जिन है, हम डायरेक्ट बाबा से कनेक्ट होकर, क्योंकि बाबा की याद से मन में स्पष्टता बनी रहती है। ये तो प्रैक्टिकल आप सबके भी अनुभव होंगे कि हर क्षण, हर स्थान, हर परिस्थिति, हर आवश्यकता में केवल बाबा ही साथी बन सकता है, मदद कर सकता है। इसलिए वो रिलेशन, बाबा के साथ का संबंध बहुत शक्तिशाली हमारा चाहिए। भल हम बरसों बिता दे समर्पित जीवन में, बहुत सेवा भी हम कर दें, लेकिन लाइन क्लियर इस धारणा से आएगी, जो बाबा कहते हैं ना, लाइन क्लियर चाहिए। बाबा ने दो बात कही है ना, क्लीन माइंड एंड क्लियर इंटेलेक्ट। स्वच्छ मन, साफ दिल, दिल माना शुद्ध बुद्धि, सत्य बुद्धि, उसको बाबा मुरली में दिल कहते हैं। वो ही कैचिंग और टचिंग का आधार। इन सब की प्राप्ति में फाउंडेशन, ये जिगरी पक्का की एक बाबा, दूसरा न कोई। जब तक मिक्स है कि बाबा भी ये भी और भी, अवस्था शक्ति नहीं भरेगी, तपस्या पावरफुल नहीं बनेगी। सुनने में सहज, मैं बिंदु बाबा बिंदु, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मेरा विश्वास निश्चय कि बिंदु बाबा ही सब कुछ करामत कर सकता है। ये नहीं कि कोई न मिले तब मैं कहूं बाबा तुम मेरे, हाँ पहले इधर उधर देख लूं और कहीं से कुछ न मिले तब मैं कहूं कि बाबा आप मेरे, नहीं। बाबा ही तो अचल रहूंगी, हिलूंगी नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है। हो सकता है पूर्वों के हिसाब से मेरे सामने परिस्थिति आई, बातें आई, लेकिन अब मेरे साथ कौन है, वो सब कुछ मुझे दे सकता है। तो जो मन कंफ्यूजन में रहता है ना, बार बार मूंझते रहते हैं, उसी के कारण डिप्रेशन में जाते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए दूसरी बिंदी भी बरोबर पकड़ना है, अपना बनाना है। ये नहीं सोचो निराकार क्या कर सकता, नहीं, वो ही कर सकता है, वो ही किसी की बुद्धि चेंज कर सकता है। बेशक हम जिसके साथ रहते हैं, सेवा करते हैं, उनके लिए हमारा रिस्पेक्ट है, हम उसकी आज्ञा पर चलने तैयार है, हाँ जी का पाठ पक्का है, क्योंकि प्रैक्टिकल वो है कारोबार में बाबा की तरफ से। व्यवहार अलग चीज है, वो हमारा एक्यूरेट हमें रखना है, पर अवस्था स्थिति के लिए इंटरनल आधार जो मुझे हिलने ना दे अवस्था से, वो बाबा से बनेगी। और तीसरी बिंदी, वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है ना। हम सोचते हैं कि मैं बिंदु बाबा बिंदु, तो फिर भी प्रैक्टिकल हो जाता है, पर ड्रामा की बिंदु, हुँ? वो तीसरा बिंदु तब हम लगा सकते हैं जब पहले ये दो बिंदु लगते हैं। जब मैं स्व में स्थित हूं, बाबा से करेक्ट कनेक्टेड हूं, तो कुछ भी हो जाएगा ना, तो भी मुझे ड्रामा में संशय नहीं आएगा। ड्रामा की कोई भी सीन मुझे प्रश्न में नहीं ले जाएगी, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये जो क्वेश्चन में हम चले जाते हैं ना, घबरा जाते हैं, मूंझ जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, वो नहीं होगा। आप इसीलिए, क्योंकि पता है मैं अपने कर्म में सही हूं और माना मुझे मेरे कर्म में विश्वास है और दूसरा बाबा मेरा साथी है। ठीक है, हम पुरुषार्थी हैं। कई बार एक होता है कि जानबूझ के भूले करना, एक हो कि जानबूझ के माना अलबेले आलसी रह के अपने कर्मों को बिगाड़ना, एक है कि पूरे अटेंटिव है करने में, पुरुषार्थ में, फिर भी भूल हो जाती है। और वो हो सकती है क्योंकि हम कोई फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचे हैं या इतने पावरफुल नहीं बने हैं। समझे ना, एक है कि जानबूझकर भूले करना, पता है फिर भी, एक है कि मैं अलबेली हूं, अटेंटिव नहीं हूं, आलस है, उसके कारण करना, राइट न करना। और एक है कि मैं श्रीमत पर हूं, यथार्थ पुरुषार्थी हूं, फिर भी आत्मा की शक्ति अपनी ही है और भूल होती है। पर अगर वो दो चीज नहीं है, अलबेलापन नहीं है, जानबूझ के नहीं करते हैं, और मेरा अपना पुरुषार्थ बाबा की याद और स्वस्थिति का ठीक है, तो ड्रामा की बिंदी आप लगा सकेंगे, आपको घबराहट नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया मेरे से, होता है ना ऐसे नहीं, क्योंकि जानबूझ के मैंने नहीं किया है ना, तो मुझे बाबा की मदद जरूर मिलेगी और मन शांत रहेगा। तीसरी बिंदी लगा सकेंगे, आत्मा में शक्ति रहेगी कर्म की सजा खाने में। इसको भी परखना है, सजा अलग है, सहन करना अलग है। कई बार हम भूल करते हैं और फिर जब लोग उस नजर से मुझे देखते हैं, मुझे टॉन्ट मारते हैं या मेरे से ऐसा व्यवहार करते हैं, तो वो कहते हैं मैंने बहुत सहन किया। ये सहन करना नहीं है, मेरी भूल है, ये सजा है कर्म के हिसाब की, क्योंकि मैंने किया है तो लोग उस नजर से देखेंगे, मुझे मेरी बात करेंगे, मुझे सुनने में आएगी सब बातें, मेरे लिए लोग क्या क्या बोलते हैं। पर मुझे बाबा में, ज्ञान में, पुरुषार्थ में विश्वास है, तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगी और वो सजा हिम्मत धीरज योग से मैं चुकाऊंगी। पर एक है कि कर्म ही मैंने ऐसे किए हैं और लोग उस नजर से देखते हैं, बातें करते हैं, मेरी ग्लानी होती है, फिर मैं कहूं कि मैंने बहुत सहन किया, नहीं, ये सहन करना नहीं, भूल नहीं है और फिर भी कई बार होता है, तो वो है सहन करना। तो जो कभी ऐसी बातें होती है, एक एक खुद की भूलों से हलचल आती है, एक एक बिगर भूल भी हलचल आती है, संगठन में कई बातें आती है, पर उस समय शांति से समझ लो बात को, जल्दी घबराओ नहीं, रिएक्ट नहीं करो, दौड़ा दौड़ी नहीं करो, शांति से बाबा के सामने बैठकर जो कुछ हुआ उसे समझो, क्या हुआ, राइट हुआ, रॉन्ग हुआ, मेरी भूल कितनी हुई, मेरा इसमें भूल कितनी हुई, अगर भूल नहीं है और ये सब हुआ है तो तीसरी बिंदी आप लगा सकेंगे, पता है राइट हूं, बाबा साथी है, उस समय आएगा जब बातें स्पष्ट होंगी, बाबा को मन से बता दिया, फिर बार बार चिंता नहीं, घबराहट नहीं, बाबा में विश्वास, सत्य में विश्वास, स्वयं के पुरुषार्थ में विश्वास, तो तीसरी बिंदी हम इजीली लगा सकेंगे। बाबा को बता देने के बाद भी जो मन बार बार सोचता है ना, इसका मतलब ये है कि और मुझे शक्तिशाली बनने की जरूरत है। जितने हम शक्तिशाली बनते जाएंगे आध्यात्मिक रूप से, तो मन इतना नहीं हिलेगा। जैसे प्रैक्टिकल आप अनुभव करते हैं ना, कि भाई पहले बहुत छोटी छोटी बात में बहुत जल्दी जल्दी मूड ऑफ होता था, दिनों तक वो चलता था, जैसे जैसे ज्ञान योग होता गया, सेवा करते गए, अब आप अनुभव करते होंगे कि अब इतना जल्दी मूड ऑफ नहीं होता है, अपने को रिकवर करने में इतना टाइम नहीं लगता है, मैं जल्दी ठीक हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं हिल जाती हूँ, बहुत ज्यादा मुझे बड़ों की मदद नहीं लेनी पड़ती है, अनुभव करते हैं कि नहीं। शुरू के 2 साल में क्या था, 5 साल में क्या था, अब 8-10 साल हो गए तो कितनी मैच्योरिटी आ गई, फर्क है ना। तो जैसे कर्म में हो रहा है, स्थिति में हो रहा है, मन में भी फिर हो जाएगा। पहले हम तुरंत बोल देते थे, कुछ भी उटपटांग बोल देते थे, सोचते नहीं थे, अब समझदार बने हैं, अब वाणी में संयम आता जा रहा है, ये लग रहा है, लग रहा है, मन में भी हो जाएगा, फिर मन में शक्ति भरेगी, क्योंकि वाचा और कर्म ठीक हो रहे हैं ना, वो मुझे एम्पावर करेंगे, वो मुझे शक्ति देंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, भी डायरेक्ट बिंदु की स्टेज में आप नहीं जा सकते हैं, योग में, जो योग में बैठते ही सीधा बिंदु बनने की मेहनत करते हैं तो भारी लगता है, होता नहीं है, पर एक स्टेज से दूसरी स्टेज निकलती है, आत्मभिमानी जितना बनते जाएंगे फिर काफी अशरीरी आप रहेंगे, शरीर में होते भी जैसे मैं अलग हूं, फिर अव्यक्त स्टेज आएंगे, फिर आपकी निराकारी स्थिति बनेगी, बिंदु स्थिति बनेगी। इसी प्रकार कर्म में फुल स्टॉप है, कर्म में संयम आवे। पहले बहुत जल्दी कर्म बिगाड़ देना, व्यवहार बिगाड़ देना, वाणी बिगाड़ देना, तुरंत रिएक्ट कर देना, इसने मुझे सहयोग नहीं दिया ना, अब मैं भी नहीं दूंगी। अवस्था खराब हुई कोई बात से, अपनी सेवा भी नहीं करेंगे, ड्यूटी भी नहीं करूंगी। अब कर्म ही ठीक नहीं है, मन कहां ठीक रहेगा। तो पहले कर्म में शक्ति से कर्म ठीक करो। जितनी अवस्था शक्ति भरती जाएगी, अब आपको कोई ज्यादा भी कुछ कह देगा तो भी आप रिएक्ट नहीं करते, टॉलरेट करते हैं, धीरज रखते हैं, पता है अपने आप थोड़े समय के बाद ये महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे, मुझे लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं। फिर वाणी हमारी व्यवस्थित होती है, फिर मन को भी बिंदु लगेगा। पर ये करना हमें जल्दी जल्दी, अभी हफ्ते की अंदर ही एक मुरली में आया था, 8-10 दिन की मुरली में, कि हम धीरे धीरे चलेंगे। बाबा ने कहा कब तक धीरे धीरे चलेंगे, ये महावाक्य। तो हमारा भी ये रहे कि धीरे धीरे क्यों, जब करना ही है तो धीरे धीरे क्यों, जबकि समय भी कम है, मार्जिन भी कम है, फिर धीरे धीरे क्यों, है ना। फिर देखो कितनी सुंदर अवस्था। प्रैक्टिकल में ये तीनों चीजें, जितना जल्दी ड्रामा की बिंदी लगाएंगे व्यर्थ कम होगा। जितनी बार हम डिस्टर्ब होते, अवस्था हिलाते, हमारी ही मेहनत बर्बाद होती रहती। हमने ही पुरुषार्थ करके बनाई, हमने ही अवस्था बिगाड़ के वो एनर्जी खत्म की। अच्छा भाई मैं रूठ रहूंगी, काम सेवा मेरी ड्यूटी नहीं करूंगी, पता है कि मेरी आवश्यकता तो है ही, मेरे बिगर काम तो चलेगा नहीं, इसलिए हम रूठे रहेंगे, रिएक्ट करेंगे, फिर बड़े हमको मनाएंगे, फिर हम सोचेंगे देखा मेरी जरूरत पड़ी ना, पर नहीं, ये सब टाइम हमारा वेस्ट जाता है। और हमने जो एक्स्ट्रा मेहनत ली वो भी फिर माइनस खाता होता है, इसलिए क्यों। मैं समर्पण हुई, सेवा कर रही हूँ, समझो मैं सुन रही हूँ, सहन कर रही हूँ, आज्ञाकारी बन रही हूँ, वो कोई उपकार करने के लिए थोड़ी हम कर रहे हैं। ये उपकार कर रहे हैं क्या बड़ों पर हम, यज्ञ पर उपकार कर रहे हैं, बाबा पर उपकार कर रहे हैं, नहीं, ये जो कुछ हम कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। और अगर हम शुरू से ध्यान नहीं देते हैं तो वो आदत बन जाएगी, फिर वो आदत बन जाएगी, फिर अपने को चेंज करना कुछ समय के बाद मुश्किल होगा, है ना। ये समय है अपने आप को ठीक करने, तो प्रैक्टिकल इसका उपयोग और शक्तिशाली अवस्था उसका रिजल्ट। ओम शांति।